الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ کے محبوب بندوں کے اوصاف کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ تھا. آج تصوف کی ایک بڑی اہم بحث ہے یا بہت اہم کلام ہے جو کتب تصوف میں کیا جاتا ہے اور صوفیہ کرام جس پر سب سے زیادہ زور دیتے ہیں, اس کے حوالے سے میں کچھ چیزیں عرض کروں گا. اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ بالاتفاق 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جو تصوف کے اور طریقت کے مقامات میں جنہیں شمار کیا جاتا ہے. راہ سلوک میں, طریقت میں, تصوف میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک ہے لفظ حال اور ایک ہے لفظ مقام. حال کہتے ہیں وہ کیفیت جو آئے چلی جائے, پھر آ جائے پھر چلی جائے, بس جس کا آنا جانا ہوتا رہے, جسے قرار نہ ہو, جسے دوام نہ ہو, اسے حال کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی تو بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا بڑا شوق پیدا ہوتا ہے, کبھی اسے ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے, کبھی قلب کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, کبھی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے, کبھی انس ہے کبھی وحشت ہے. یہ مختلف انداز ہوتے ہیں جو انسان کے قلب پہ طاری ہوتے رہتے ہیں, انہیں حال کہا جاتا ہے. احوال بھی انہیں کہا جاتا ہے, اور اسی کے قریب قریب ایک لفظ ہوتا ہے مواجید, یہ لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن جو تصوف میں سب سے بنیادی طور پہ مطلوب چیزیں ہیں وہ ہیں جنہیں مقام کہا جاتا ہے. مقام وہ ہے کہ جس پر قیام ہوتا ہے, جو بندے میں قرار پکڑ چکا ہوتا ہے. مقامات کا طے کرنا یہ اصل مطلوب, اور احوال جو ہیں یہ محبوب ہیں لیکن اصل مطلوب نہیں. آئیں تو اچھی بات ہے, لیکن نہ آئیں تو بھی اس سے فرق نہیں پڑتا جبکہ مقامات حاصل. وہ مقامات کون کون سے ہیں؟ اگر آپ احیاء العلوم پڑھیں اور اس کی جو چوتھی جلد ہے اس میں بھی توکل کا, صبر کا, شکر کا آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس کی لسٹ کے اندر یہی چیزیں. رسالہ کشیریہ پڑھیں تو اس میں بھی یہی والی مباحث کی جاتی. اور جو اس کے علاوہ کتب تصوف ہیں سب میں ان مقامات پر بات ہوتی ہے کہ یہ وہ وصف ہے جو مستقل بنیادوں پر راہ سلوک کے مسافر کو حاصل ہونا چاہیے, اور جب کوئی ولی بنتا ہے تو اس میں یہ والا وصف ضرور پایا جاتا ہے. اب وہ کیا چیزیں؟ اس کو منازل بھی کہتے ہیں, منازل سلوک, اور اسے مقامات سلوک بھی کہتے ہیں. اس میں جو پہلا مقام ہے وہ ہے مقام توبہ, کہ توبہ جو ہے وہ ہر ولی کی زندگی میں لازمی طور پہ شامل ہوتی ہے, داخل ہوتی ہے. یعنی ترک معاصی اور عزم علی ترک المعاصی, اور اگر کوئی ماں سبق میں ہو چکا ہے تو اس پر ندامت, تین چیزیں توبہ کے اندر ہوتی. کہ پہلے جو ہے اسے چھوڑ دینا, اور جو کیا اس پر شرمندہ ہونا, اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا, اس کا نام توبہ ہے. لیکن لفظ توبہ جو ہے یہ اس معنی کے اندر تو یوں کہہ لے کہ عمومی طور پہ اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات لفظ توبہ اس سے بلند تر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ گناہ نہیں ہے, خلاف اولا ہے, تو خلاف اولا کا ترک اور جو اولا ہے اس کا اختیار کرنا توبہ یہ بھی ہے. لیکن اس کے لیے عام طور پہ جو صوفیہ کرام ہیں وہ لفظ انابت استعمال کرتے ہیں, انابت, اور اس سے لفظ بنتا ہے منیب, یا اس کے لیے دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے اوبہ. उससे लफ्ज बनता है अव्वाब, लफ्ज तौबा से तायब और तव्वाब, और लफ्ज इनाबत है उससे मुनीब, और लफ्ज औबा से अव्वाब। ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद अपना अमल मुबारक उम्मत की तालीम के लिए बयान फरमाया, फरमाया कि अल्लाह की कसम बेशक मैं एक दिन में अल्लाह ताला की बारगाह में 70 से ज्यादा मर्तबा इस्तिगफार करता हूं और तौबा करता हूं। 70 से ज्यादा मर्तबा इस्तिगफार करता हूं और तौबा करता हूं। और ये कुरान पाक का हुक्म था नबी पाक अलैहिस्सलाम को, फसबिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम उस हुक्म इलाही पर अमल के लिए और उम्मत की तालीम के लिए आप इस्तिगफार और तौबा किया करते थे, वरना सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहों से मासूम, सैयदुल मासूमी, और आपने अगर जाहिरी खिलाफ औला भी किया तो उम्मत की तालीम की वजह से वो आपके हक में औला ही था, वो आपके हक में औला ही था। जैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बैठ कर नवाफिल पढ़े तो फरमाया कि तुम मेरे जैसे नहीं हो, मुझे बैठने पे भी उतना ही सवाब मिलता है जितना तुम्हें खड़े होने पे सवाब मिलता। और दूसरा ये था कि बयान जवाज के लिए आका करीम अलैहिस्सलाम ने बैठकर नवाफिल पढ़े। तो यूं तौबा जो है ये मरातिब के एतबार से मुख्तलिफ होगी। तौबा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी फरमाई लेकिन उम्मत की तालीम के लिए, तौबा औलिया किराम भी करते हैं और वो अपने मर्तबे के एतबार से करते हैं। पहला मर्तबा कम होता है, वो उसको देख के उससे ज्यादा मर्तबे पे जाते हैं, तो पहले मर्तबे को देख के तौबा करते हैं। तो पहली चीज होती है तौबा। लेकिन जब एक आम बंदा इस रास्ते पे चलता है, तसव्वुफ के सलूक के रास्ते पे चलता है, तो उसकी तौबा अपने उस हकीकी माना में होती है कि जो उसने गुनाहों को छोड़ना होता है, गुनाहों पर शर्मिंदा होना होता है और आइंदा गुनाह ना करने का अज़्म करना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि तसव्वुफ के किसी अगले मर्तबे तक बंदा बगैर तौबा किए पहुंचे। इस दरवाजे में दाखिला ही तब मिलता है जब बंदा तौबा करता है। इसलिए सूफिया किराम क्या करवाते हैं कि सबसे पहले वो तौबा करवाते हैं। बल्कि बैत के जो अल्फाज आप सुनते होंगे तो खा वो बैत बरकत हो या वो बैत ईसाल और इत्तिसाल हो, उसके अंदर भी शुरू में पहले तौबा करवाई जाती है कि मैं तौबा करता हूं और फिर उसके बाद अगले आमाल के एतबार से कलाम किया जाता है। तो ये पहली चीज है जो राह सुलूक में आती है और ये पहली मंजिल है कि तौबा के मकाम पर बंदा फाइज हो। दूसरा मकाम है वो है मकाम जुहद। कुरान पाक की आयत मुबारक है जिससे औलिया किराम इस्तदलाल करते हैं, लिकै ला तअसौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम। तर्जमा क्या है, सूरह हदीद की आयत है, आयत नंबर 23 है, फरमाया कि जो तुमसे चला जाए, माफा तक जो तुमसे फौत हो जाए, जो तुमसे चला जाए, लिकई ला ता असौ, उस पर अफसोस ना करो, वला तफरहू बिमा आताकुम, और जो खुदा तुम्हें दे उस पर फराह का शिकार ना हो जाओ, उस पे ऐसी खुशी ना मनाओ कि जिसमें खुद पसंदी का, जिसमें तकब्बुर का, जिसमें खुदा से गाफिल होने का माना पाया जाए। वैसे तो खुशी जो है नेमत के ऊपर खुशी करने का हुक्म है ना कि नेमत मिले तो खुशी करो। तो ये लफ्ज फराह जो है ये फरहे महमूद भी होती है, फरहे मजमूम भी होती है। अल्लाह की नेमत पे फल यफराहू, ये भी आयत, और यहां फरमाया वला तफरहू बिमा आताकुम, वो फरहे महमूद थी कि नेमत पे बंदा खुश होता है कि मेरे रब ने मुझ पे करम किया और मैं इसे नेकी में इस्तेमाल करूंगा। और फरहे मजमूम ये है कि जो नेमत मिले उसे गुनाह में इस्तेमाल करे या उसकी वजह से गाफिल हो जाए, ये फरहे मजमूम, और इससे जो है वो मना किया गया। तो अब क्या है, जोहद ये है कि जो चला जाए उस पर गम ना हो और जो मिले उसकी वजह से बंदा गाफिल ना हो, और इसी को जोहद कहते हैं, इसी को जोहद कहते हैं। और औलिया किराम की जिंदगियों में यही वाली शय जो है वो पाई जाती है कि उनसे अगर कोई माल चला जाए तो उन्हें गम नहीं होता, और मिल जाता है तो वो खुशियों के शादियाने नहीं बजाते। जैसे कई औलिया किराम के बारे में ये वाक्या गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ भी मंसूब किया जाता है, ये इमाम आज़म की तरफ भी मंसूब किया जाता है, और ये शेखुल इस्लाम बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ भी मंसूब किया जाता है कि आपके पास, क्योंकि तीनों ही ताजिर थे, कि आपके पास आपके खादिम ने आके कहा कि हुजूर हमारा जो काफिला फलां मुल्क गया था तिजारत के लिए तो वो बड़ा नफा कमा के वापस आया है। तो आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद दोबारा फिर उसी खादिम ने या दूसरे ने आके कहा कि जो दूसरे इलाके में काफिला गया था वो सारे का सारा नुकसान कर गया, तो आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो महफिल में जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा कि हजरत ये दोनों पे अल्हम्दुलिल्लाह, या तो आप उस पर कहते और इस पर ना कहते, या इस पर कहते उस पर ना कहते, तो ये दोनों पे कैसे? फरमाया कि वो जो पहले ने खबर दी उस वक्त जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा वो माल के मिलने पर नहीं कहा था, और दूसरी मर्तबा में जो अल्हम्दुलिल्लाह कहा वो माल के जाय होने पर नहीं कहा था, बल्कि ये था कि मैंने दोनों मर्तबा अपने दिल पे गौर किया कि मेरे दिल की कैफियत कैसे, माल मिलने पर गाफिल तो नहीं हो गया, माल ज्यादा ही मिला है इसकी इत्तला मिलने पर गाफिल तो नहीं हो गया, तो मैंने देखा कि दिल गाफिल नहीं हुआ, तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जिसने नुकसान की खबर दी थी उस पे मैंने दिल पे गौर किया कि दुनिया के जाने पर गमजदा तो नहीं हुआ, तो मेरा दिल उसी तरह खुदा से राजी था, तो मैंने अपने दिल की उस कैफियत पे कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ना माल मिलने पे कहा था ना माल जाने पे कहा था, मैंने तो अपने दिल की जो खुदा से ताल्लुक वाली हालत थी उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कहा था। तो अब आप ये देखें कि ये जो अल्फाज है लिकई ला तअसौ अला मा फातकुम वला तफरहु बिमा आताकुम, इसका अमली तौर पर जो इजहार है वो यहां पर कैसा शानदार तरीके से मौजूद है। और इसीलिए अब ये देखें कि सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम के पास माल आता था तो उन्हें खर्च करने के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता था। जब उनसे कहा गया कि माल खर्च करो, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला ने घर का सारा माल लिया, और उम्र फारूक रदी अल्लाह ताला ने घर का आधा माल लिया, उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला ने बेतहाशा खर्च किया, उन्हें इसके ऊपर था ही नहीं कि भी माल जो है ना वो इतना सारा मैं दे रहा हूं। अच्छा, माल मिलता था तो उसका ताल्लुक देखते थे कि खुदा के साथ उसका ताल्लुक कैसे बनता है। जैसे एक सहाबी के बारे में है कि वो किसी बाग के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, उनका अपना बाग था, वो उसमें नमाज पढ़ रहे थे, दौरान नमाज दरख्त के ऊपर जो है वो परिंदे चहचहा रहे थे, तो उनकी चहचहाहट खूबसूरत थी तो वो नमाज के दौरान उसके सुनने में मशगूल हो गए। जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया कि ये बाग मैं अल्लाह की राह में सदका करता हूं, क्योंकि इस बाग की वजह से अल्लाह ताला की याद में गफलत हुई। तो जो माल गफलत का सबब बने वो माल दुनिया है, और उसमें पढ़ना ये खिलाफ जोहद है, और माल मौजूद है लेकिन गफलत नहीं है तो ये जोहद है कि दिल जो है वो उस माल की मोहब्बत से मुनक़ते हो जाए। तो ये तसव्वुफ का दूसरा मकाम मकामे ज़ोहद। तीसरा मकाम है मकामे फ़क्र। मकामे फ़क्र से मुराद गुरबत नहीं कि बंदे की जेब में पैसा ना हो, नहीं, बल्कि क्या है, पहले आयत मुबारक पढ़ता हूँ उसके बाद इसका माना बयान करता हूँ। आयत मुबारक है फरमाया या अय्युहन नासु अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब अल्लाह की तरफ मोहताज हो। मोहताजी ये नहीं कि मेरे पास माल नहीं, मेरे पास दुनिया नहीं, मोहताजी ये कि मैं खुदा का मोहताज हूं। इस एहतियाज का इस्तेहजार, इस एहतियाज का दिल के अंदर मुस्तकीम होना, ये है मकाम फ़क्र। तो ये जो लफ्ज बोलते ना फुकारा फकीर भिकारी, नहीं, जो तसव्वुफ के अंदर आप लफ्ज इस्तेमाल करते कि ये फकीर अर्थ करता है, जो इस माना के अंदर बोला जाता है वो क्या होता है, अल फकीर इल्लाह अल गनी, ये उस एतबार से होता है। और ये जो है कि बंदा खुद को मोहताज समझे अल्लाह ताला का, ये जितना ईमान कामिल हो, जितना खुदा की अजमत को बंदा सोचे और जितना इस पर तवज्जो देगा, تو یہ مقام فقر اس کا اتنا بلند ہوتا جائے گا. مثلاً عقیدے کے اعتبار سے تو ہم سب ہی یہ کہتے ہیں, ہم سب کا یہ عقیدہ ہے نا کہ ہم تو ذرے ذرے میں قطرے قطرے میں خدا کے محتاج ہیں, یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. لیکن یہ دل و دماغ کے اندر روشن کتنا ہے, یہ نمایاں طور پہ کتنا سمجھ آتا ہے, کتنا نظر آتا ہے, یہاں کے مسئلہ ہے. اور قرآن مجید سے یہ عقیدہ بڑی کثرت کے ساتھ, یا یہ وصف جو ہے یہ بڑی کثرت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آیت مبارکہ ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہ اے اللہ مالک ملک کے, تو جسے چاہے بادشاہت دے دے اور جسے چاہے واپس لے لے, جسے چاہے تو عزت دے, جسے چاہے تو ذلیل کر دے, تیرے ہاتھ میں ساری خیر ہے, بے شک تو ہر شے پر قادر ہے. تو اب آپ دیکھیں یہ والا مفہوم اگر دل میں جاگوزی ہو اور مستحضر ہو تو اب جو احتیاج اللہ ہے وہ کیسے سامنے آتی. یہ آیت مبارکہ ہے, ارشاد فرمایا ان العزت للہ جميعا, بے شک ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندے کا کوئی کمال نہیں, بندے کے پاس عزت ہے تو مالک تو اللہ تھا, اس نے عزت دے دی. اسی طرح بندہ کسی بھی عمل کے اندر جہاں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا, جیسے ہم افعال میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا, اور باعتبار قسم کے تو یہ حقیقت ہے کہ ہم نے کیا, لیکن قرآن پاک میں کیا ہے, فرمایا ان القوۃ للہ جميعا, کہ ساری قوتیں اللہ کے لیے, ساری عزتیں اللہ کے لیے, ساری قوتیں اللہ کے لیے. اچھا پھر فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان و زمین میں جو کچھ ہے بشمول ہمارے سب اللہ کا ہے. تو گویا ہم کلی طور پہ خدا کے محتاج ہیں. یا فرمایا وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ رب العالمین, کہ تم تو چاہ بھی نہیں سکتے, تم تو چاہ بھی نہیں سکتے مگر یہ کہ چاہے اللہ رب سارے جہانوں کا. تو ہم اپنی مرضی سے چاہ بھی نہیں سکتے, خواہش بھی نہیں کر سکتے, الا یہ کہ مشیت الہی اس کے ساتھ. یا فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون, اور اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا, تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا. تو اعمال میں بندہ اپنا کارنامہ نہ سمجھے کہ میں نے یہ عمل کیا تو میں بڑا باکمال ہوں, وہ اللہ تعالی نے ہی اس کی توفیق. وما توفیقی الا باللہ, اور میری توفیق تو نہیں مگر اللہ کی مدد کے ساتھ. اور اسی کو دن رات پڑھنے کا فرمایا گیا, جو ہم جملہ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اس کا معنی کیا ہے کہ نیکی کرنے کی قوت نہیں اور برائی سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے. تو یہ جتنی آیتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں, ان سب آیتوں میں کیا ہے کہ بندے کی احتیاجی اللہ کی طرف, بندے کی احتیاج اللہ کی طرف, اس کی محتاجی اللہ کی طرف. جب یہ احتیاج بطور مقام کے بن جائے تو یہ مقام تصوف ہوتا ہے, ورنہ میں نے ابھی بیان کیا, ابھی تو سب کے دلوں میں یہ بات موجود ہے. یہاں سے جا کے کسی کے سامنے ذکر کریں گے پھر تھوڑی سی دیر میں آ جائے گی, کل پرسوں کے بعد بھول جائیں گے, پھر کبھی یاد آئے گی تو آئے گی ورنہ نکل جائے گی. تو یہ کیا ہوگا, یہ حال ہوگا. آپ کی جو کیفیت بنی وہ حال ہے, لیکن صوفی اور ولی کے لیے یہ حال نہیں مقام ہوتا ہے, کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو مردہ بدست زندہ سمجھتا ہے, وہ ہر وقت مردہ بدست زندہ سمجھتا ہے, وہ کہتا میرا کچھ بھی نہیں, سب مولا کا ہے. تو یہ ہے مقام فقر اور یہ ہے تصوف کا ایک مقام. اس کے بعد ایک اور مقام ہے اور وہ ہے مقام صبر. مقام صبر کے تین پہلو, کیونکہ صبر کا مطلب ہوتا ہے ڈٹ جانا, خود کو روک لینا, کسی شے پہ خود کو روک لینا. صبر خود کو روک لینا نیکیاں کرنے پر کہ نیکیاں کرنی ہیں, خود کو روک لینا گناہوں کے ارتکاب سے کہ گناہ نہیں کرنا, खुद को रोक लेना मखलूक के सामने शिकवा शिकायत करने से किसी मुश्किल के वक्त। तो नेकियां करने पर सब्र, गुनाहों से बचने पर सब्र और मुश्किल वक्त में शिकवा शिकायत करने से सब्र कर, यह है सब्र। और इसके बारे में कुरान पाक की जितनी आयतें हैं वो आप पर बखूबी वाजे हैं कि कितनी मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, ऐ ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। या फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्बिरू वस्साबिरू, ऐ ईमान वालों सब्र करो और सब्र में दूसरों पर बरतरी ले जाओ, मुसाबरत मुकाबला, सब्र करो और सब्र में दूसरों से फौकियत ले जाओ। अच्छा, अब इसमें नेकियों पर सब्र करना यह भी मुश्किल होता है, गुनाहों से बचने पर सब्र करना यह भी मुश्किल होता है, और मुश्किल वक्त में शिकवा शिकायत ना करना यह भी मुश्किल होता है। तो इसलिए तीनों जगह पे सब्र करना होता है। फिर उसके साथ एक और चीज होती है, वो ये है कि एक तो है शिकवा शिकायत ना करना कि उसको बताओ उसको बताओ उसको बताओ, यार मेरे साथ ये मसला चला, मेरे साथ ये मसला चला, मेरे साथ ये मसला चला। एक ही होता है कि दिल में अल्लाह ताला के हवाले से कोई मलाल पैदा ना हो। वरना आपने सुना होगा कि कई लोग कुफ्रिया जुमले बोल देते हैं, यार हमारा ही घर मिला, हमारे ऊपर इतनी सख्ती, हम पे इतनी तकलीफ, हम पे इतनी दुआएं मांगते हैं, इतनी नेकियां करते हैं, तो कई उसमें कुफर में जा पड़ते हैं। और कई वो हैं कि जो जबान से इजहार नहीं करते थे लेकिन दिल के अंदर जाए एक नाराजगी का अंसुर होता है। आपको तो अभी लोग नहीं मिलते होंगे, हमें मिलते हैं इस तरह के कि जो अपनी उस कल्बी कैफियत का बयान करते हैं। तो ये क्या है, ये सब्र के मुनाफी है। तो अपने दिल को ऐसा मजबूत कर लेना कि नेकियां करने पर इस्तिकामत मिल जाए, गुनाह छोड़ने पर इस्तिकामत मिल जाए, और मुश्किल में अल्लाह ताला के बारे में दिल में कोई ऐसा गलत गुमान पैदा ना हो और बिला वजह लोगों के सामने बयान ना करता फिर। डॉक्टर के सामने मरीज बयान करता है वो सही है, लेकिन डॉक्टर के अलावा पूरे मोहल्ले के सामने बयान करता है ये बेसब्री है, ये सब्र नहीं। बल्कि एक दर्जा इससे भी आगे होता है, वो ये है कि रजाए मौला अज हमा औला, कि अल्लाह ताला की मर्जी पर ऐसा राजी होना कि मुसीबत को भी नेमत समझे, मुसीबत को भी नेमत समझे। किसी बुजुर्ग ने ऐसी को बात कही कि भाई खुदा के कुर्ब और खुदा की बारगाह में बंदे का मर्तबा बुलंद होता है जब वो मुसीबत को भी नेमत समझे। तो उनसे सवाल हुआ कि हुजूर अगर यही कवर करेंगे तो दुआ किस बात की करते हैं, मुश्किल आती है तो हमें तो दुआ का हुक्म है ना कि दफे बला के लिए दुआ करो। तो उन्होंने कहा कि वो इसलिए होती है कि ऐ अल्लाह तेरी तरफ से आने वाली आजमाइश भी नेमत और तेरी तरफ से आने वाली नेमत भी नेमत, राहत भी नेमत, मुसीबत भी नेमत, राहत भी नेमत, लेकिन हम कमजोर बंदे हैं, हम ये अर्ज करते हैं कि नेमते मुसीबत को नेमते राहत से बदल दे, नेमते मुसीबत को नेमते राहत से बदल दे। तो वो हमारे इज्ज का इजहार है, लेकिन उसके पीछे उनका वही होता है कि रिजाए मौला अज हमा औला, अल्लाह की रिजा सबसे बरतर है, सबसे बढ़कर है। इसके बाद एक और मकाम आता है सब्र के बाद, वो है मकाम शुक्र। शुक्र के बारे में जो आयात है वो भी आप पे वासे, कितनी जगह पे अल्लाह ताला ने शुक्र के बारे में फरमाया वश्कुरूनी वला तकफुरू, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो। शुक्र क्या है, दिल जबान आजा तीनों से अल्लाह ताला का शुक्र किया जाता है। वो क्या है कि नेमत को खुदा की तरफ मंसूब किया जाए और ये दिल में ये ख्याल हो, जबान पे इसका इजहार हो, आजा से इसका अमल हो कि नेमतें खुदा की हैं, खुदा के लिए और हम पर खुदा का एहसान है। तो जबान से ये कहना कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें ये नेमत अता फरमाई, तो ये शुक्र की एक बड़ी खूबसूरत किस्म है और अहदीस में बकसरत इसका बयान। जितनी भी दुआएं हैं सारी यही, पानी पीने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लिबास पहनने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हादा व रज़क़नी मिन ग़ैरि हौलिन मिन्नी वला क़ुव्वति, खाना खाने के बाद की दुआ सोने से उठने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना वइलैहिन नुशूर, ये जितनी दुआएं ये सारी की सारी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की सूरत है। अच्छा, इसी तरह हर नमाज के बाद 33-33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, फिर जो सुबह शाम की दुआएं हैं जो औरादो वज़ाइफ हैं अगर आप वो देखेंगे उन सब के अंदर हमद मौजूद है, उन सब के अंदर हमद मौजूद है कि उसमें हमद के कलिमात ज़रूर होंगे। या जो हदीस मुबारक है फरमाया कि दो कलिमे ऐसे हैं रहमान की बारगाह में बड़े प्यारे हैं, ज़बान पे हल्के हैं मीज़ान में भारी हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अलअज़ीम, उसमें भी हमद। तो ये जो हमद के कलिमात हैं ये बड़ी कसरत के साथ हैं, तो ये जो ज़बान से इसकी अदायगी है ये जिक्र इलाही की भी सूरत है और इसके साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की भी सूरत है। आज़ा का शुक्र ये है कि उसे अल्लाह ताला की फरमा बरदारी में इस्तेमाल करे, गुनाह में इस्तेमाल ना करे। दिल का शुक्र क्या है, यूं कह लें कि दिल का शुक्र असल बनता है और बाकी शुक्र की अकसाम उसकी फरा बनती, कि दिल की ऐसी कैफियत कि बंदा यही समझे कि बस खुदा की मेहरबानी खुदा का एहसान है खुदा की करम नवाजी है वरना हम किसी काबिल नहीं। तो दिल का उस कैफियत में रहना या उस कैफियत का जो है वो उसमें आना ये दिल का शुक्र है। और ये दिल का शुक्र अगर आ जाए ना तो जबान खुद ही बोल देती। जैसे वो एक बुजुर्ग थे वो ठंडा पानी पीते थे, तो किसी ने कहा कि हुजूर बुजुर्ग तो गर्म पानी पीते हैं ताकि नफ्स मरे, तो फरमाया कि हर एक की अपनी नीयत होती, हर बंदे को वही मिलता है जो उसने नीयत की। तो फरमाया बात यह है कि गर्म पानी पिए तो जबान से हमद निकलती है और ठंडा पानी पिए दिल से हमद निकलती है। और होता भी ऐसा ही है कि आपको बड़ा लजीज मज़ेदार किस्म का मिले, शरबत मिले मशरूम मिले, तो दिल से बंदा कहे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। इफ्तारी के अंदर कैसे बंदा हमद करता है, तो ये क्या है, ये दिल से हमद। ये जो दिल की कैफियत होती है ना, ये कैफियत जो है ये एक ईमानी कैफियत है और ये कैफियत है शुक्र है जो बड़ी असीम है। तो औलिया किराम की जबान आज़ा और दिल ये सब शुक्र इलाही की तरफ मुतवज्जे होते हैं। बड़ी से बड़ी मुश्किल के अंदर भी वो ये कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र। जाहिर की मुसीबत आई तो कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है, बातिन की नहीं। दुनिया की आती है तो कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र आखिरत की नहीं। दुनिया की आती है तो कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है दीन की नहीं। किसी एक उस पे आती है तो कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है बाकी बदन तो सलामत। तो वो शुक्र में उस मर्तबे पर पहुंच जाते हैं। तो ये है शुक्र। उसके बाद छठी मंजिल है खौफ, कि अल्लाह ताला का खौफ दिल में हो। कुरान पाक की आयात इसके बारे में भी बड़ी वाज़े हैं, वखाफून इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो तो मेरा खौफ करो, तो मुझसे डरो, ये अल्लाह ताला का फरमान। और खौफ से मुराद क्या है, खौफ से मुराद वो खौफ के जो खुदा की नाफरमानी से रोक दे, वो खौफ नहीं कि किसी वक्त खौफ की बात करके तो थर थर कांपते रहे और बाद में फिर गुनाह में पड़ गए। एक तो ये है कि गुनाह हो जाए, ये हो जाता है, वली मासूम नहीं होता, उससे भी गुनाह हो सकता है, आम आदमी मासूम नहीं, नबी फरिश्ते मासूम, तो गुनाह हो जाता है हो सकता है, लेकिन वो खौफ अक्सर व बेशतर अहवाल में बंदे को गुनाह से रोकने वाला, ये वाला खौफ। तो ये खौफ है और बंदे को गुनाह से रोक रहा है, तो ये खौफ मकामे तसव्वुफ है, ये सुलूक के मकामात में से एक मकाम है। अब इसके साथ अगर आंखें रोती हैं तो भी ठीक है, नहीं रोती तो भी ठीक है, क्योंकि आंखों का रोना मतलूब नहीं, बुकाउल ऐन मतलूब नहीं है, बुकाउल कल्ब मतलूब है। तो खौफ वो जो गुनाह से रोक दे, आखिरत का खौफ, खुदा की नाराजगी का खौफ। फिर खौफ के आगे मर्तबे आ जाते हैं, उसको वैसे ही तो उसके लिए दूसरे अल्फाज भी आते हैं, खौफ है, हैबत है, रहबत है, हुम लिरब्बिहिम यरहबून या इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, खशियत रहबत और ये लफ्ज़ खौफ, तो इस तरह के कई, इसी तरह इश्फाक भी है, इश्फाक भी। ये खौफ की मुख्तलिफ कैफियत है, कोई खौफ सजा के डर का है, कोई नाराज़गी का है, कोई किसी की अजमत का है, तो ये मुख्तलिफ कैफियत है। और अल्लाह ताला के साथ खौफ जो है ये सारी सूरतों से मुताल्लिक है, उसके अजाब का डर भी है, उसकी अजमत भी पेश नज़र है, उसकी नाराज़गी का भी डर है, तो ये बहुत सारी सूरतें बनती। तो ये छठी मंजिल थी। सातवीं मंजिल है मंजिल रजा, मकाम रजा। रजा उम्मीद, अल्लाह ताला से उम्मीद रखना। इस पर भी कुरान पाक की बहुत सी आयतें, वयरजूना रहमतहू वयखाफूना अज़ाबह, कि वो लोग अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं और उसके अजाब से डरते हैं। और ये खौफो रजा अक्सर व बेशतर इकट्ठे बयान किया जाता है। ये उसलूब कुरानी है, ये उसलूब हदीस है, उसलूब दीन है कि खौफ के साथ रजा, यानी खौफ के साथ उम्मीद का बयान होता है, जैसे इस आयत के अंदर। अब अल्लाह ताला से उम्मीद बंदे की बड़े कैसे, एक होती है गफलत और एक होती है उम्मीद। उम्मीद और गफलत के अमल बाज़ोकात एक जैसे होते हैं कि जिसे उम्मीद है तो उसके अंदर भी इतना डर नहीं होता और जिसमें गफलत होती है उसमें भी इतना डर नहीं होता। लेकिन गफलत वाला ये नहीं कह सकता कि मैं उम्मीदवार हूं, ये इनके अंदर बारीक फर्क होता है। अब ये उम्मीद कैसे पैदा की जाए, बंदा अपने अंदर ये उम्मीद कैसे पैदा करे या सूफिया किराम उम्मीद कैसे पैदा करते हैं, वो ये होता है कि एक तो वो ये देखते हैं कि यार हम अल्लाह ताला ने हमें हमारे इस्तेहकाक के बगैर बेशुमार नेमतें अता फरमाई, हमें आंखें मिली, कान मिले, जबान मिली, दिल मिला, आजा मिले, बदन की सेहत सलामती मिली, तो हमारा कौन सा हक था अल्लाह ताला कि उसके बदले में अल्लाह ताला ने दिया बगैर इस्तेहकाक के। तो ये जो अल्लाह ताला ने हमारे इस्तेहकाक के बगैर हम पे कर्म किया, उसी वजह से हम उम्मीद रखते हैं कि मौला और कर्म करेगा, खुदा हम पे और कर्म फरमाए। ये है रजा। लेकिन इसमें तफसील किया है कि असबाब इख्तियार करके फिर रहमत की उम्मीद रखी जाए, तरके असबाब के साथ रहमत की उम्मीद रखना, इसे रजा नहीं कहते, इसे तमन्ना और उमनिया कहते हैं। वो उमनिया के जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, लैसा बि अमानीकुम, तुम्हारी उम्मीदों के ऊपर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उम्मीद तमन्नाओं पे, आरजुओं पे, इस पर कुछ नहीं मिलेगा, उम्मीद पे मिलेगा। और उम्मीद इख्तियारे असबाब के बाद रहमत इलाही की तरफ मुतवज्जे हो, यह है उम्मीद। तो यह है मकाम रजा। आठवीं मंजिल है, आठवां मकाम है मकाम तवक्कुल। औलिया किराम की जिंदगी में आप देखेंगे, आप उनके सीरत पढ़े, तवक्कुल अला हस्बिल मरातिब, इतने वाकयात मिलेंगे और तवक्कुल की आयात कुरान पाक में जितनी है वो आपके सामने, कि यूं कह लें कि कसरत के साथ इसका बयान। वह अल्लाह ही फतवक्कलू इन कुन तुम मुमिनी, और अल्लाह ही पर तवक्कुल करो अगर तुम ईमान वाले हो। ये कुरान पाक में बड़ी कसरत से बयान किया गया। अच्छा, अब तवक्कुल कैसे पैदा किया जाता है? तवक्कुल पैदा किया जाता है एक तो खुदा की कुदरत पे नजर, कि अल्लाह की कैसी अजीम कुदरत है, और दूसरा खुदा की मेहरबानी पे नजर, कि वो मेहरबान कितना, तीसरा उसके इल्म पर नजर हो कि वो हमारी हर हालत और कैफियत को जानता भी, वो अलीम भी है, हकीम भी है, कदीर भी है, रहीम भी है। तो अब आप आम एतबार से समझें कि अगर हमारा कोई चाहने वाला, हमारा कोई बड़ा, वो हम पे मेहरबान भी हो, हमारी हालत को जानता भी हो, हमारी मदद करने पर कादिर भी हो, तो हमारे दिल की कैफियत उसके हवाले से क्या होगी? हम आम तौर पे कहें जी हमें क्या टेंशन, हमें क्या टेंशन, हमारा फलां जो है इतना इख्तियार है उसके पास, वो मेरी हालत को जानता भी है और इसके साथ जो है वो मेरे साथ बड़ा मेहरबान भी। जब कुदरत, इल्म, रहमत, अल्लाह ताला की इन तीन सिफात पे नजर हो और बंदा इसे बार बार सोचे तो खुदा पे तवक्कुल बढ़ जाता है। और तवक्कुल में कमी तभी आती है कि जब बंदा इन चीजों पे गौर नहीं करता, फिर वो असबाब की दुनिया में घूमता रहता है और मुसब्बिबुल असबाब पे नजर नहीं होती। तवक्कुल तरके असबाब का नाम नहीं है कि असबाब छोड़ दें, असबाब इख्तियार करें, लेकिन साथ में क्या कि मेरा खुदा मेरी हालत को जानता भी है, मुझ पर मेहरबान भी है और कुदरत रखने वाला भी। आप असबाब इख्तियार करके इन तीन चीजों के साथ आप जोड़ते जाएं, तवक्कुल बढ़ता जाएगा दिल के अंदर और अल्लाह ताला बंदे पे मेहरबानी। और जिन्होंने ऐसा तवक्कुल रखा तो अल्लाह ताला बयाबान के अंदर भी अता फरमा देता है, वहां से अता फरमाता मिन हैसु ला यहतसिब, है ना। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु, जो खुदा पे तवक्कुल करे, ये नहीं फरमाया फला फला, जो अल्लाह पे तवक्कुल करे तो वो उसे काफी है। और मिन हैसु ला यहतसिब, जहां से उसका गुमान भी नहीं होगा उसे रिज्क अता फरमाए। तो ये तवक्कुल, नवी मंजिल, नवा मकाम, वो है अल्लाह ताला से मोहब्बत। मकामे मोहब्बत और दसवां मकाम है मकामे रजा। सूफिया किराम का इसमें इख्तलाफ है कि मकामे रजा का मरतबा बुलंद है या मकामे मोहब्बत का मरतबा बुलंद है। ये नवे और दसवें के दरमियान, बाद ने कहा मकामे मोहब्बत आखिरी ये मंजिल है, बाद ने कहा नहीं मकामे रजा आखिरी मंजिल है। तो ये औलिया किराम के दरमियान इख्तलाफ है, लेकिन वो तो उनके अपने मकाम के एतबार से, हमें तो मिल जाए कुछ ना कुछ इसमें से, हमारे लिए तो यही बहुत है। मकामे मोहब्बत के दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और ईमान वाले सबसे शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते। और अल्लाह ताला की मोहब्बत क्या, कि ये दिल अल्लाह की तरफ मायल हो, उसकी तरफ मुतवज्जे हो, अल्लाह की मुलाकात का शौक हो, मौत ना पसंद ना हो। कि मौत क्या है, सूफिया फरमाते हैं कि अल मौतु जसरुन यूसिलुल हबीबा इलल हबीब, कि मौत ऐसा पुल है जो एक हबीब को दूसरे हबीब तक पहुंचाता, मोहिब को महबूब तक पहुंचाता। तो ये मकामे मोहब्बत। अब इसके नतीजे में क्या होता है, जब मोहब्बत होती है तो फिर बंदा खुदा का जिक्र बड़ी कसरत से करता, क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है उसका जिक्र बड़ी कसरत से होता है। उससे हम कलाम होने को दिल करता है तो बंदा दुआ करता है, उससे मुनाजात को दिल करता है तो बंदा नमाज पढ़ता है, उसकी बातें सुनने को दिल करता है तो कुरान पढ़ता है। ये फिर उस मोहब्बत की आगे सूरतें निकलती हैं कि जो बंदा फिर अमल दरामद करता है। तो यह है मकामे मोहब्बत, नवा मकाम। दसवां है मकामे रजा। मकामे रजा जो है यहां पर दो एतबार से इसका माना किया जाता है, एक तो है खुदा बंदे से राजी हो जाए, यब्तगून फ़ज़लन मिन अल्लाहि व रिदवाना, वो अल्लाह का फजल और उसकी रिजा तलाश करते हैं, या फरमाया व रिदवानुम मिन अल्लाहि अकबर, और अल्लाह की रिजा सबसे बड़ी शय। लेकिन दूसरा जो यहां ज्यादा मुराद होता है वो है कि बंदा खुदा से राजी हो। अब इस पर होता है यार बंदा तो खुदा से राजी होता है, वो वाला सिर्फ राजी होना नहीं जिसे हम आम बोलचाल में कह देते, खुदा से राजी होना ये है कि फिर खुदा जिस हाल में रखे बंदा उस पर राजी रहे। नेमतों में तो बंदा खुदा से राजी, अल्लाह ताला नेमतें बंदे को बेतहाशा अता फरमाए तो बंदा तो राजी राजी है, लेकिन ये वो रजा है कि अब जो भी हो जाए बंदा खुदा से राजी है। औलाद दुनिया से चली जाए बंदा खुदा से राजी, कोई महबूब हस्ती दुनिया से चलेगी बंदा खुदा से राजी, जैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह ताला ने जो सरकार के शहजादे थे उनकी वफात पे क्या फरमाया था कि हम तेरे जाने पे गमगीन हैं लेकिन अपने रब के फैसले पे राजी। तो ये जो है अल्लाह ताला के हर फैसले पर राजी होना, अल्लाह ताला के हर फेल पर राजी होना, ये वाली रजा, तो ये है मकामे रजा। और ये तसव्वुफ का दसवां मकाम, ये वो दस मकामात हैं कि जिन पर इत्तेफाक है कि यकीनी तौर पर मकामाते तसव्वुफ में ये शामिल हैं। और औलिया किराम के जब भी आप हालात पढ़ेंगे, सीरत पढ़ेंगे, आपको ये वाली झलकियां जो है उनके अंदर नजर आएंगे, ये औसाफ उनके अंदर नजर आएंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, इन औसाफ से हिस्सा अता फरमाए, औलिया किराम का फैजान अता फरमाए, उनकी अकीदत अता फरमाए, और हमें भी इस रास्ते का मुसाफिर बनाए। आमीन بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم।